யசோதானந்தன வ்ரஜ ஜன ரஞ்சன யசோதானந்தன வ்ரஜ ஜன ரஞ்சன யசோதானந்தன வ்ரஜ ஜன ரஞ்சன ஜமுனா தீரவன் சாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஜய ராதா ஸ்யாம சுந்தர ராதா ஸ்யாம சுந்தராதி ஜய கௌரநிதாய் ஜய கௌரநிதாய் கௌரநிதாய் ஜய கௌரநிதாய் ஜய ஜய பிரபுபாத் 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 ஜய ஜய குருதேவ் 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 நிதாய் கௌர ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் நிதாய் கௌர ஹரி சித்தநாத் பிரேமானந்தி ஹரி ஹரி போல் ஜாம் விஷ்ணுபாத் பரமஹன்ஸ் பரிவிராஜகாச்சாரிய அஷ்டோத்தர சத் His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jaom Vishnupad Paramahansa Paribrajakacharya Srotar Sat, His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Mara, Srila Prabhupada Ki Jai. Guru Parampara Ki Jai. Roop Sanatan Bhatta Raguna, Sri Jeev Gopal Bhatta Das Raguna, Sat Goswami Prabhu Ki Jai. Anant Koti Vaisnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Sri Haridas Thakur.
ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्रीमद भागवत महापुराण की जय। निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हर बोल। ऑल ग्लोरी टू द संबल डिबोरी। ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी गौरंगा जगत श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि 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 हरि। 33 स्क्रीन पे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और अध्याय प्रथम और अध्याय का शीर्षक है राजा सुदुम्न का स्त्री बनना और आज का श्लोक क्रमांक है 19 से लेकर के 33 33। तो हम लोग 33 श्लोक का जो है पुनरावृत्ति यहाँ पे करेंगे और पीछे के सारे श्लोक को हम दोहराएंगे। तो 33 नंबर का श्लोक।
तत ऊर्ध्वम वनम तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि सा चानुचर संयुक्ता विचार वनाद वनम तत्ऊर्ध्वं वनम तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि सा चानुचर संयुक्ता विचार वनाद वनम तत् ऊर्ध्वं वनम तद्वै पुरुषा वर्जयन्तहि सा चानुचर संयुक्ता विचार वनाद वनम।
वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। ततः ऊर्ध्वम उस समय के बाद से वनम जंगल में तत उस वय विशेष रूप से पुरुषा पुरुषगण वर्जयंती नहीं प्रवेश करते ही निसंदेह सा स्त्री रूप में सुदुम्न च भी अनुचर संयुक्ता अपने साथियों के साथ विचार घूमने गया। वनात वनम एक जंगल से दूसरे जंगल में, उस जंगल से कोई भी पुरुष उस जंगल से कोई भी पुरुष उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु राजा सुदुम्न स्त्री के रूप में परिणत होकर अपने साथियों सहित एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 2.22 में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नमानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक देह धारण करता है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुदुम्न तथा उनके सभी साथी नर पुरुष थे, जिनका अर्थ यह है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्रियां बन गए थे, जिसका अर्थ यह है कि उनका वस्त्र बदल गया था किंतु आत्मा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। शरीर को तो इसी जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा का तथा वह एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता है इसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह केवल एक आवरण मात्र है। पंडिता सबदर्शिना, ऐसा व्यक्ति आत्मा का दर्शन परमात्मा के अंश के रूप में करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। उन्नीस नंबर के श्लोक से आज है, निशम्य तद वचस्तस्य भगवान प्रपितामह होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे रविनंदनम। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रपितामह वशिष्ठ होता पुरुष पुरोहितों की त्रुटि को समझ गए, अतः हुए सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, एतत् संकल्प वैषम्य होतुस्ते व्यभिचारत तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने सामर्थ्य से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान सौ महायसा अस्तौसीदादि पुरुष मिलाया पुरुषत्व काम्यया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के पश्चात शुद्ध पुरुष भगवान श्री विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने हेतु प्रार्थना की। तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरिर ईश्वर ददा विला भवन तेन सुदुम्न पुरुषर स्वभ। शुद्ध नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस प्रकार इला सुदुम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। सो एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने वृत्तः कतिपया मात्येर स्वमारुह्य सैंधवम प्रगृह्य रुचिरम चापम सरांशो परमाद्भुतान दंसितो अनुमृगम वीरो जगाम दिशमुत्तराम। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदुम्न अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश में लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्जत था और वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार बनम मेरो ध्वस्तान प्रविवेश यत्रास्ते भगवत चर्वो रस रम मान सहो मया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है जहाँ शिव सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुदुम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्ट एवासो सुदुम्न परवीरहा अपश्यन् स्त्रियया स्त्रियमात्मानमस्वम् चौबड़वाम नृप। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गए हैं। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनोश भुवन विक्षमाना परस्परम्। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों में अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणत हुए देखा तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रह गए। श्री राजोवाच कथमेवम गुणो देश केन वा भगवन कृत प्रसन्नमेनम क्षमा चक्ष परम कौतूहलम किना। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। श्री सूक उवाच एकदा ग्रीसम द्रष्टुम ऋषयस तत्र सुव्रता दिशो व्यति मीरा भाष कुर्वंत समुपागमन। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया। तान विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भृशम भर्तुरकात समुत्थायो निविमाश्वस्थ पर्यधात। जब देवी अम्बिका ने इन महान साधु पुरुषों को देखा तो ये अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गईं और अपने वक्ष स्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। ऋषियो पीतयोर्वेक्ष्य प्रसंगम रममानयो निवृत्ता प्रययुस्तस्मान् नर नर नारायणाश्रमम्। शिव तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सभी साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और वे नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। तदिदम भगवान आह प्रियाया प्रिय काम्यया अस्थानम यह प्रविशे दीतत सवयो सिद्ध भवे दिति। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु शिव ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मुलमिलत् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुव्यस्य कृपा सिन्धुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझे ये परम सौभाग्य जो आज प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, ये श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। पंचम पुरुषार्थ को देने वाला ये ग्रंथ, कह रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं, ये तदरूपम श्रीमद् भागवतम भगवान का ही एक स्वरूप है, इसलिए ये ग्रंथ बड़ा ही विलक्षण है। और खास करके ये तब से विलक्षण और ज्यादा हो गया जब से इस भागवतम के श्लोकों को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने जिह्वा से उच्चारण किया। अपने आप में ये परिपूर्ण ग्रंथ था क्योंकि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम ये श्रील व्यास देव के समाधि की अवस्था की विवेचना है। समाधि में पहुंच करके श्रील व्यास देव ने जो भगवान की लीला कथाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनको इन्होंने साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया और उस साहित्य को गुरु परंपरा के माध्यम से जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने जिह्वा से उच्चारण किया तो ये अमृतमय हो गया। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवतम 1.1.3 ये भागवतम की महिमा जो निगम कल्प तरूर, ये ग्रंथ हमें जो भी हम कल्पना करें उसकी प्राप्ति करा देती है। और ये गलितम फलम है, ये ऐसा गला हुआ फल है न इसमें छिलका है न गुठली है, यानी कि एक ऐसा पका हुआ आम है जो रस के रूप में परिणत हो चुका है। फल को तो खाया जाता है ना, तो कह रहे हैं पीबत भागवतम रस मालयम, तो फल को खाएगा ना, ये तो पीने के लिए बोले तो क्योंकि ये रस जो है रसमय हो गया, इसमें कोई त्याज्य वस्तु है ही नहीं, छिलका गुठली है ही नहीं, इसलिए पूरा। और इनको पूने वाले कौन कौन लोग हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो भगवान के भक्ति में रमन करते हैं जो मुक्त जीवात्माएं भी है, तब मुक्ति पर्यंत भी इस रस में जो है रसी लेते हैं। आत्मा रामस्य मुनियों निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ये आत्मा राम जो आत्मा में रमन करते हैं ऐसे मुनि जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही 12 वर्ष की अवस्था में थे श्रील सुखदेव गोस्वामी और इस दुनिया को त्याग करके पिता माता के तरफ देखे भी नहीं और वन के तरफ चले गए। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी के कानों में श्रील व्यास देव के द्वारा
उच्चारित श्रील व्यास देव के द्वारा जो उच्चारित और सिखाए हुए श्लोकों को श्रील सुखदेव गोस्वामी वन प्रांत में सुने तो उनके मन में उनको जानने की उत्कंठा जगी, जो आत्मा राम है उनको किसी भगवान ने में उनको सर्टिफाई कर दिया जो आपको माया नहीं पकड़ सकती। ऐसे व्यक्ति का मन कहां रमन करने लग गया, इस श्रीमद् भागवतम में। तो ये आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, उनका भी मन इसमें आकर के ठहर जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है जिसको श्रील प्रभुपाद जी के विशेष कृपा से आज हम सबके समक्ष ये भागवतम है। नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती जो हम भागवतम को देख पाते या पढ़ भी पाते या क्या पता नहीं। 18,000 श्लोकों से समन्वित श्रीमद् भागवतम ग्रंथ आज हम श्रवण कर रहे हैं और इस्कॉन के छत्र छाया में श्रीमद् भागवतम का उच्चारण प्रत्येक दिन होता है। तो हम इस चर्चा पे आते हैं, श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो प्रथम अध्याय जो एक राजा सुधुम्न के स्त्री बनने के की कथा को दर्शाता है। तो आप सब भक्त कई दिनों से कथा को श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा को देखिए 19 से लेकर के हमें 33 तक आना है। ये बड़ी लंबी कथा है, इसी में ज्यादा समय चला गया पढ़ने में। तो श्रीमद् भागवतम को भगवान के अंगों से तुलना की गई है। तो ये जो 9वां स्कंद है ना, ये श्रीमद् भागवतम के ग्रीर श्री भगवान के कंठ को सूचित करता है। तो ये कंठ का और भागवतम के जो 10 विषय हैं, उस 10 विषय अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतय मन वंतर स्थानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय 2.10.1 भागवतम। वहां पे भागवतम के 10 जो मुख्य विषय है उसमें से ईशानु कथा को 9वां स्कंद दर्शाता है। ईशानु कथा मीन्स ईश मीन्स भगवान, भगवान के दिव्य भगवान कृष्ण बलराम की कथा, भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों की कथा, भगवान के जो महर्षि ऋषिगण हैं और मुक्त जीवात्मा है उनकी कथाओं को यहाँ पर में दर्शाया गया है। और इसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति में क्या होता है, काम क्रोध लोभ घमंड द्वेष जैसे उससे क्या हानियां होगी, इसको हमें इस स्कंद में पढ़ने से पता चलता है। और इससे जो प्रभावित होने वाले जो राजागण हैं, जो ये काम क्रोध दोष लोभ से ईर्ष्या से जो प्रभावित हुए राजा देवतागण तथा महान ऋषियों का जो वर्णन है इसके अंदर में वर्णन करते हैं। और इसमें जो प्रसंग है, इस प्रसंग को जो व्यक्ति मनन करता है, जो 9वां स्कंद का जो प्रसंग है उसको मनन करने मात्र से व्यक्ति अपने पर्याप्त रूप से जो है ना माया को जान, माया की शक्ति को जान सकता है, परिचित हो सकता है। इसलिए जो है उसे इस कथा को श्रवण करने मात्र से इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने में बड़ा ही सहयोग मिलता है। तो कथा इस प्रकार है, कई लोग नए भक्त होंगे जो प्रथम बार इसमें कथा में सम्मिलित हुए होंगे। तो ये वैवस्वत मनु के पुत्र, जो वैवस्वत मनु का नाम ही श्राद्ध देव है, उनको पुत्र बहुत समय से कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र की कामना से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का जो है समारोह किया और यज्ञ में वरुण और मित्र देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न कराया जा रहा था। उनके गुरुदेव वशिष्ठ देव हैं और उनकी जो पत्नी है श्रद्धा, जो पयोव्रत को धारण किए यानी कि दूध पी करके रहती हैं, तो पयोव्रत को धारण किए हुए राजा के मन में तो एक पुत्र की कामना के लिए था, लेकिन उनकी पत्नी श्रद्धा ने जो पुरोहित को होता को जाकर के कान में बोले जो मुझे पुत्री की कामना चाहिए, पुत्री की इच्छा है। तो पुत्री की इच्छा से ये यज्ञ जो है संपन्न तो हो रहा था। जैसे ही पुरोहितों को मंत्र उच्चारण करने का आदेश मिला तो उनको याद आ गया रानी के बातों का, तो जो पुत्री को प्राप्त कराने वाले मंत्र हैं वो शब्द से शुरू होता है, वसट शब्द से। वसट शब्द से शुरू होने वाले मंत्रों का उच्चारण किए और उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा इनको देख करके मन बहुत खिन्न हो गया और प्रसन्न हो गया, क्योंकि उनके मन में कामना थी एक पुत्र को, पुत्र की, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी तरह की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बड़ा खिन्न हो गया, तो खिन्न होकर के तो ये हुआ कैसे, पुरोहित की गलती की वजह से। यहां पर मैं श्लोक में दिया हुआ है 19 नंबर में, जो पुरोहित की गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो वशिष्ठ मुनि इस बात को समझ के जो ये किस कारण से हुआ है, तो अपने शिष्य इस मनु को प्रसन्न करने के लिए मनु बोले मैं अपनी शक्ति से आपको एक पुत्र दूंगा। और वशिष्ठ मुनि ने इस भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई प्रार्थनाओं का उच्चारण किए और कठिन तपस्या किए, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने जो है वो पुत्री जो प्राप्त हुआ था उनका नाम ईला रखा गया था। तो ईला को का शरीर स्त्री से परिवर्तित होकर के पुरुष के शरीर में परिवर्तित हो गया, उसका नाम रखा गया सुदुम्न। तो सुदुम्न जब राजा बने तो एक दिन की बात है, सुदुम्न अपने कई साथियों के साथ, घोड़े सवारियों के साथ मिल करके जो है जंगल में प्रवेश की आखेट करने के लिए। तो आखेट करते 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 इस वन प्रांत के एकदम उत्तर दिशा की ओर चले गए। और उत्तर दिशा में हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, इस भूखंड का नाम क्या है, भारतवर्ष। जम्बू द्वीप के अंदर में ये भारत वर्ष है। ऐसे जो वर्ष है ना, पांचवा स्कंद में आप लोग पढ़ चुके हैं, 9 वर्ष हैं। प्रियव्रत महाराज के द्वारा 7 समुद्र और 7 द्वीप की रचना करते हुए ये 9 वर्ष में स्थापित हुआ। जैसे भारत वर्ष, इलावृत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भाद्रस्व वर्ष, ऐसे कई वर्ष है, 9 वर्ष है। उसी में से एक इलावृत वर्ष है। इलावृत वर्ष के अंतर्गत में ही ये भगवान शिव का जो कैलाश पर्वत है ना, ये मेरु पर्वत, बीच में मेरु पर्वत है जम्बू द्वीप। मेरु पर्वत बहुत ही ऊंचा एक पर्वत है, उसके चारों तरफ जो है ना 7 तरह के समुद्र हैं, खारे पानी का, मीठे पानी का, गन्ने के जूस का, कई तरह के जूस, मदिरा का, कई तरह की आप जो जूस का जो है समुद्र है, वहीं पे कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत का एक छोटा सा एक क्षेत्र है जिसको सुकुमार क्षेत्र बोलते हैं। वो सुकुमार क्षेत्र की ये विशेषता है, जो पूरा कैलाश की ये विशेषता नहीं है, सुकुमार क्षेत्र की वो बड़ा ही अच्छा वन प्रदेश, बहुत ही सुंदर सुगंधित फूल है वहां पे। तो उस प्रदेश को भगवान शिव और पार्वती ने अपने रमन के लिए जो है चुना, और वहीं पे उस समय में रमन कर रहे थे। और उसका ये प्रभाव था, जो उस एरिया में कोई पुरुष अगर प्रवेश कर गया गलती से भी तो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सुकुमार प्रदेश में ये राजा सुदुम्न शिकार करते करते उसी सुकुमार प्रदेश में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही उसका पुरुष का शरीर स्त्री में परिवर्तित हो गया, उनके घोड़ा भी घोड़ी बन गई, उनके सारे जो सेना नायक सब थे वो सारे के सारे जो है स्त्री में परिवर्तित हो गया। अब वे इस शरीर को लेकर के स्त्री शरीर में लज्जित होकर के एक वन से दूसरे वन भटकते रह गए। भटकते के क्रम में, क्योंकि ये सुदुम्न का शरीर जो स्त्री में परिवर्तित हुआ था ये बहुत सुंदर दिखने में लग रही थी, इतना सुंदर था, जो इनको इनकी भाव भंगिमा और रूप यौवन को देख करके सोम का पुत्र, ये जो चंद्रमा के जो पुत्र हैं, वो बुद्ध साहब ने इनको पसंद कर लिया। और पसंद करके सहवास के क्रम में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम है पुरुरवा। चंद्रवर्ष का पहला राजा पुरुरवा प्रकट हुए। किनके गर्भ से? इस सुदुम्न के स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हुए से प्रकट हुए हैं। अब जब इस समय से भ्रमण करते रह गए, बहुत समय बीत गया, तो उनको अपने गुरुदेव की याद आई, वशिष्ठ मुनि की। वशिष्ठ मुनि की जब याद आई तो हे गुरुदेव आप मुझे रक्षा करें। तो हम कितने भी विपत्ति में होते हैं ना, हमें गुरुदेव उस विपत्ति से, गुरुदेव और भगवान ही हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि वही एक मुक्त है। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि की याद किए, तो वशिष्ठ मुनि को जब ये बात सारे बताए तो उनको बहुत ज्यादा ये हुआ जो हमारे शिष्य को क्या हुआ। तो उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने बहुत ज्यादा तपस्या की, किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव की तपस्या करने से वो आशुतोष हैं, वशिष्ठ मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, उन्होंने अपने डिमांड किए। लेकिन अब डिमांड भी ऐसा किए वशिष्ठ मुनि, क्योंकि ये सुकुमार क्षेत्र में स्त्री बनने का इसलिए ऐसा हुआ था, क्योंकि अभी आपने देख चुके हैं एक बार की बात है, जो बहुत बड़े बड़े महान ऋषि इस दुनिया में भ्रमण करते करते भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे, और भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ उस सुकुमार क्षेत्र में थे। जब उसमें ये ऋषिगण प्रवेश किए, उस समय में भगवान शिव पार्वती के साथ रमन कर रहे थे और पार्वती पूर्ण रूपेण नग्न अवस्था में थी। इन महान ऋषियों को देख करके ये पार्वती जी लज्जित हो गई, अपने गुप्त अंगों को ढकने के क्रम में जैसे ही ये ऋषि महात्मा देखे वो इस दृश्य को, वो तुरंत यू टर्न ले ली और बद्रिका आश्रम की तरफ चले गए। इस दृश्य को देख करके भगवान शिव जो है अपनी पत्नी अंबिका को प्रसन्न करने के लिए, ये अंबिका दुर्गा देवी या जो भी आप पार्वती समझें, वो वहां पर मैं 10 करोड़ दासियों के साथ वहां पर मैं निवास करती है। पंचम स्कंद में पढ़ोगे 10 करोड़ है या 1 करोड़ ऐसे समथिंग है, 10 करोड़ शायद है। तो अपने दासियों के साथ वहां पर मैं रमन करती हैं। अब जब अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया, जो हमारी पत्नी पार्वती को आज ये लज्जित महसूस होना पड़ा, इसलिए मैं इस प्रदेश को ये शक्ति प्रदान करता हूं, जो इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा पुरुष, वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस इलावृत वर्ष में जो सुकुमार क्षेत्र है उसमें केवल एक ही पुरुष है, वो कौन है? भगवान शिव। तो इसी के प्रभाव से तो इधर भगवान शिव ने इस प्रदेश को ये वरदान दिया हुआ है, और इधर भगवान शिव प्रसन्न होकर के वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं आप जो है सुदुम्न को जो स्त्री में परिवर्तित, इसको पुरुषत्व को प्रदान करिए। तो भगवान शिव ने बीच का रास्ता बनाए और उनको बोले आपका ये शिष्य 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा। तो हर दूसरा महीना में जाकर के ये सुदुम्न जो है पुरुष बन जाता था, और तो राजा तो था ही, जब वो पुरुष बनता था तो राजकाज संभालता था। राजकाल संभालते हुए ऐसे कई वर्ष बीत गए और 1 महीना फिर गायब हो जाता था, स्त्री बनती थी तो वो सामने नहीं आता, उनके प्रजा बहुत खिन्न होने लग गए, जो कैसा राजा है 1 महीना रहता है 1 महीना गायब हो जाता है। ऐसे करते करते सुदुम्न वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए, अपने पुरुरुबा को राजगद्दी संभाल करके वो जंगल में चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे करके आगे जो है ये श्राद्ध देव जो वैवस्वत मनु है ना, इनको पुत्र की अभी भी प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने फिर से भगवान की कठोर तपस्या की, तो फिर इनको 10 पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर आगे का जो है चंद्रवंश का जो है साम्राज्य आगे की कथा जो है चलता है। तो इस कथा जो अभी आपने इतना सारा सुना, इस कथा का निचोड़ क्या है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, जो इच्छा और दृढ़ संकल्प होते हुए भी हम अपनी नियति को कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। जो नियति होना है सुदुम, जैसे राजा को पुत्र की प्राप्ति करना था, उन्होंने कितनी ज्यादा प्रयास किए, यज्ञ कर लिए, लेकिन नियति को उन्होंने परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन एक है, एक विधि है इस जगत में जिसके द्वारा हम नियति को भी परिवर्तित कर सकते हैं, वो है भक्ति योग का मार्ग। अभी आप आगे कथा सुनोगे, यही जो 10 पुत्र जो इनको मनु जी को प्राप्त हुआ है, उसमें प्रथम पुत्र है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध की तपस्या से उन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में, जो वशिष्ठ मुनि के साप को भी खत्म कर दिया, उन्होंने साप भी खत्म हो गया और भगवान के धाम को गए हैं। इसलिए केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही हम अपनी नियति की दशा को जो है बदल सकते हैं। देखिए 19 से लेकर के 33 तक जो श्लोक है ना, इसमें न श्रीधर स्वामी महाराज,
न ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, न ही जीव गोस्वामी पाद, न ही मैक्सिमम के कोई भी आचार्य जो है ना इसमें टीका नहीं किए हैं। केवल और केवल 33 नंबर के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने टीका किए हैं। और ये टीका श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, जो जैसे सुदुम्न का शरीर स्त्री में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ये जो शरीर, शरीर का परिवर्तन हो रहा है ना, ये जो शरीर है जो पुरुष के शरीर में है अभी और अभी स्त्री के शरीर में, तो ये शरीर पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष के शरीर में परिवर्तित हो रहा है। केवल और केवल शरीर का परिवर्तन है, न कि आत्मा, इस शरीर के अंदर में जो आत्मा निवास कर रहा है उस आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर मैं इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ने, तो आत्मा कभी भी चेंज नहीं होता, केवल और केवल इस शरीर चेंज हो रहा है। कहने का मतलब इस शरीर को क्या बोला गया है, कवरिंग। इस आत्मा का जो कवर है अभी पुरुष शरीर से कवर किया गया है इस आत्मा को, और आप सबके शरीर को स्त्री शरीर से कवर किया गया है। तो इसी बात को समझना है, ये शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक श्लोक कोट कर रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यो नयानि संयाति नमानि देही। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा जो है ना पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा वही रहता है, इस आत्मा की भलाई के लिए हमें हमेशा सोचना है। इस शरीर का संबंध आत्मा से नहीं है, शरीर का कनेक्शन कभी भी आत्मा से नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो इस शरीर में काफी समय से रहते रहते हम इस आत्मा को ही शरीर समझ करके और इस तरह का व्यवहार जो हम करने लग गए हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरण देहांतरण करता है, ये इस बात को कोई व्यक्ति ज्ञानी पुरुष विवेकवान पुरुष अगर समझ लेता है ना, तो फिर ये शरीर परिवर्तन से उसके अंदर में कोई मलान नहीं होता, उसको सुख दुख का भान नहीं होता। क्योंकि शरीर परिवर्तन से या शरीर बीमार होने से या किसी का शरीर छूट जाने से जो रोना होता है या वियोग का जो अवस्था पैदा होता है वो उसके लिए होता है जो इस आत्मा के देहांतरण की विधि को, साइंस को नहीं समझता है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये पंडिता समदर्शिना कौन है, जो विवेकवान पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष है ना, ये ब्राह्मण में, कुत्ता में, हाथी में, बिल्ली में या किसी भी चीज में वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, वो सभी शरीरधारी को आत्मा के रूप में देख रहा है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो यही समझना है हमें, जो ये जो जीवात्मा है, हम सब जो जीवात्मा है ना, ये हम सब शाश्वत हैं। हमारे शरीर का परिवर्तन होगा, हो रहा है, हम कई शरीर चेंज कर चुके हैं, और हमारा कर्म अगर खराब रहेगा तो आगे भी हमें शरीर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला जो आत्मा है ना, ये शाश्वत अंश है। वो कौन है, भगवान के अंश हैं। भगवान बोलते हैं ये जो अंश इस शरीर के अंदर में अभी है ना, ये मेरा ही अंश है। 15.7 भगवत गीता, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन समेत जो हमारी 6 इंद्रियां है इस शरीर के साथ संघर्ष कर रही है, और ये जीव लोक, ये जो मेरा ही अंश है, तो हम सब किसके अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इसको हमें समझना है, और इस शरीर में 2 चीजों का वास है, एक तो आत्मा जो भगवान का ही अंश है, और एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप लेकर के, जो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम
भगवान परमात्मा स्वरूप में अंडाणु परमाणु सभी कण कण में विराजमान करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप के साथ आत्मा इस शरीर में रहते हैं।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्य युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर।
इसके अंदर में उपद्रष्टा अनुमंता जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा भी निवास करते हैं, आत्मा जो है सारे तरह के क्रियाकलाप करते हैं, फल को चखते हैं, लेकिन परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण इस शरीर में बैठ करके वो केवल और केवल मुख दे करके अपने मित्र को देखता रहता है। श्वेतास्त्र उपनिषद के यजुर्वेद शाखा के अंतर में एक चीज बताया गया है, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा और प्रकृति को जान लेता है ना, वो सब कुछ जान लेता है। तीन चीज को जानना है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। गीता में पांच विषय है, कौन कौन? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से तीन चीज को मुख्य रूप से जानना होगा। एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्म संस्थम न परम भेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम। अपने भीतर स्थित जो परमात्मा है ना, परमात्म तत्व को जानना चाहिए, और इसको जानने से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। जो परमात्मा को जानने से सुपीरियर कोई चीज यहां पर में नहीं है। तो कह रहे भोक्ता, तो भोक्ता इस शरीर में कौन है? स्वयं परमात्मा, भोग करने वाला। भोग्यम, भोग्यम कौन है यहां पर में? जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति जो है भोग्य है। और प्रेरितारम च मत्वा और परमात्मा, ये तीन चीज इस शरीर के अंदर में विराजमान है। तो परमात्मा को ही जानना एक मनुष्य का परम लक्ष्य होता है, और इसको जो व्यक्ति जान से, इससे बड़ा कोई जानने की वस्तु नहीं है। इसलिए यही ज्ञेय वस्तु, इसको जानने योग्य वस्तु है और जानने का प्रयास करना चाहिए। कठोपनिषद के यजुर्वेद शाखा में एक श्लोक आया है, उसमें बताते हैं ये हमारा शरीर कैसे बनता है। हमारा शरीर इंद्रियों का समूह है, और इस इंद्रियों का जो समूह शरीर है, तो इस शरीर के स्वामी कौन है? शरीर के स्वामी जो है ना, एक रथ, इस शरीर को अगर हम रथ के रूप में पर समझें, तो इस रथ का और इस शरीर का स्वामी कौन होगा? मन। और बुद्धि इसका क्या होता है? सारथी। और मन जो होता है लगाम। इस बात को समझना चाहिए, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा परमात्मा मन बुद्धि और इस शरीर को हमें समझना है, क्योंकि अपनी बुद्धि पे, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है। अगर मन के अनुसार हम चलेंगे तभी हमारा पतन होता है। इसलिए इस बात को हमें हमेशा भगवत भक्ति में अपने आप को साधु संघ में लगा के रखना चाहिए, और जहां पे ये शिक्षा एजुकेशन दी जा रही हो उनको ग्रहण करना चाहिए, तभी हम इसको समझ सकते हैं। अब ये बात समझ में आती है, कोई व्यक्ति बोलेगा जो ये जीवात्मा, कोई व्यक्ति बता ये परम आत्मा जो है स्त्री है या पुरुष है? कौन बताए, स्त्री है या पुरुष है आत्मा? आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है और न नपुंसक है। इसको एक श्लोक बता रहे हैं, नैव स्त्री नपुमानेश च चैवायम नपुंसक यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। ये कह रहे हैं ये आत्मा पर, ये न तो पुरुष है न स्त्री है, लेकिन जैसे जिस जिस तरह का ये शरीर धारण करता है ना, उस शरीर से अपना संबंध बना लेता है। इसलिए ये आत्मा क्या है? हम सब आत्मा भगवान के अंश हैं। अगर आत्मा को सूर्य की एक किरण समझें, या अग्नि का एक चिंगारी समझे और सूर्य को भगवान कृष्ण लोक समझे, तो इसमें श्रील कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में एक आदि खंड के सातवां परिच्छेद में 116 नंबर पयार में इस बात को बताते हैं। जो तत्व जेन ईश्वरेर ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप जैसे अस्फुर्लिंगेर कण। तत्व वस्तु जो है ये सूर्य सदृश है, भगवान सूर्य सदृश हैं और जीव जो है, हम सब जो जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, उस सूर्य के एक कण के समान है। तो जीव के, जीवात्मा की स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। श्रील कृष्णदास कविराज जी यही मध्य खंड में जो है 20 नंबर के अध्याय में 108 नंबर का पयार में ये बात बोलते हैं। ये जो जीव है ना, हम सब, हम तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पॉइंट पे हैं। जैसे ये आ रहे हैं ना, तो इस तरफ भी कुछ है, इस तरफ भी कुछ है, तो इस तरफ अंतरंगा शक्ति है, उस तरफ बहिरंगा शक्ति है। तो जीव बैठा हुआ है इस मार्जिनल पॉइंट पे। जीव में ये स्वतंत्रता है, ये अंतरंगा शक्ति या राधा रानी के क्षेत्र में आना चाहता है या कृष्ण भक्ति को छोड़ करके माया के क्षेत्र में आना चाहता है। तो हम सब जीव भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना हमारा जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास हमारा स्वरूप है। भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित कर लेना। और भगवान जीव का एक स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी पाद बता दें, गोपी भरत्योर पद कमलयोर दास दासानुदास। हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं कृष्ण का भक्त हूं? नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण, कोई भक्त बोलता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति बोले जो मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, तो समझना वो मेरा भक्त नहीं है। जो बोलता है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, वही मेरा भक्त है। तो हमारी आइडेंटिटी, एक गौरी वैष्णव की जो आइडेंटिटी, क्या चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ना हम विप्रो ना चवर्ण, जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, मैं उस भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के भरता है, उनके नंद नंदन श्री कृष्ण के जो है हम दास हैं, यही हमारा आइडेंटिटी है। ये हमारा स्वरूप कैसे पता चलेगा? इस स्वरूप को जानने के लिए हमें इस्कॉन जैसे बोट में बने रहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में शुद्ध वैष्णव भक्तों का संग और श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव आचार्यों की इंस्ट्रक्शन, शास्त्रों की वाणी को एज इट इज फॉलो करेंगे और नित्य 16 माला का कम से कम जप करेंगे, तो हमारे अंदर में अपने स्वरूप को जानने की शक्ति प्राप्त होगा। समझ गए? नहीं तो हम स्वरूप को जान नहीं सकते। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे तरए भव सिंधु रे, ए धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर ती रे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। भजन मीन्स जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं, शास्त्र का दृढ़ता से पालन, आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जीवन है ना, बड़ा ही टलमल है। पूर्णी का पत्ता समझते हो? कई लोग गांव घर में उस पे प्रीति भोज भी खाते हैं। पूर्णी के पत्ता पे कितना भी पानी डाल दो, एक सेकंड के अंदर में गायब हो जाता है। वो जीवन, ये जीवन जो है ना पूर्णी के पत्ता पे पानी डालने से वो टलमल होता है, तुरंत विचलित तो होकर निकल जाता है, ये जीवन भी टलमल है। कौमार आचरित प्राग्यो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7.6.1 भागवतम, जो ये हमें अपने जीवन के कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, समझे ना। मनुष्य शरीर जो मिला है ना, दुर्लभ मानुष शरीर है, मिला ही ना बारंबार, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी जो डायमंड अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए हमें भगवान की भगवत भक्ति में अपने आप को नियोजित करना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरि हरि।